द्रव्य विचार से लेकर धर्म और अधर्म तक का जितना भी टॉपिक है वह सब जैन दर्शन के अंतर्गत तत्व विचार के अंदर आता है। अब हमारा चौथा टॉपिक जैन आचार और धर्म जैन दर्शन के अंतर्गत है, जिसका सबसे पहला तत्व है बंधन। जैन दर्शन का प्रधान उद्देश्य है बंधन से मुक्ति। इसलिए बंधन क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे इससे मुक्ति होती है और मुक्ति के स्वरूप क्या हैं, इन विषयों पर विशद विचार आवश्यक है। पहला, बंधन। भारत के प्रायः सभी दर्शनों के अनुसार बंधन का अर्थ है जन्म ग्रहण, किंतु विभिन्न दर्शनों में आत्मा तथा संसार के संबंध में अलग अलग विचार हैं। इस विचार भेद के कारण बंधन के अर्थ के संबंध में कुछ पृथक पृथक मत हो गए हैं। जैनों के अनुसार जीव को ही बंधन के दुख भोगने पड़ते हैं। जीव चेतन द्रव्य है या स्वभावतः पूर्ण है, यथार्थता या अनंत है, किंतु शरीर धारण करने से इसके सामने अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। बाधाओं के दूर हो जाने पर ही यह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत आनंद प्राप्त करता है। जिस तरह मेघ और तुषार के हट जाने पर सूर्य समस्त पृथ्वी को आलोकित करता है, उसी तरह बाधाओं के हट जाने पर जीव भी अनंत ज्ञान तथा अन्य अंतर्निहित गुणों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि ये बाधाएं क्या हैं और ये किस तरह जीव के स्वाभाविक गुणों को अभिभूत कर देती हैं। शरीर से जीव का बंधन होने से ही इसके स्वाभाविक गुण अभिभूत हो जाते हैं। शरीर पुद्गल से बनता है, विशेष प्रकार के शरीर के लिए विशेष प्रकार के पुद्गल की आवश्यकता होती है और उसका विशेष प्रकार से रूपांतर किया जाता है। जीव की अंतर्निहित प्रवृत्तियों के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है, अर्थात जीव अपने कर्मों या संस्कारों के वश हो शरीर धारण करता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अर्थात पूर्व जन्म के विचार, वचन तथा कर्म के कारण जीव में वासनाओं की उत्पत्ति होती है। वासनाएं तृप्त होना चाहती हैं, फल यह होता है कि ये पुद्गल को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, जिससे विशेष प्रकार का शरीर बनता है। अतः जीव अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जीव शरीर का निमित्त कारण है और पुद्गल इसका उपादान कारण। शरीर से केवल स्थूल शरीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि शरीर से इंद्रिय, मन तथा प्राण का भी बोध होता है, जिसके कारण जीव के स्वाभाविक गुण अभिभूत हो जाते हैं। माता पिता से जो शरीर मिलता है उसे आकस्मिक नहीं समझना चाहिए। कर्म से यह निश्चित हो जाता है कि किसी व्यक्ति का जन्म किस वंश या परिवार में होगा। कर्मों से ही शरीर का रंग, रूप, आकार, आयु, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियों की संख्या एवं उनके विशेष धर्म नियंत्रित होते हैं। शरीर के कारण रूप कर्मों तथा उनके सभी धर्मों का हम समष्टि एवं व्यष्टि की दृष्टियों से विचार कर सकते हैं। समस्त दृष्टि से कर्म समस्त वासनाओं का समूह है, जिसका फल समस्त धर्म विशिष्ट शरीर है। किंतु व्यष्टि दृष्टि से शरीर का विशेष विशेष धर्म, विशेष विशेष कर्म का नामकरण, विशेष विशेष धर्म विशेष विशेष कर्म का फल है। अतः जैनों के अनुसार कर्मों की संख्या अनेक है। उन्होंने किसी कर्म का नामकरण उसके फल के अनुसार किया है। जो कर्म यह निश्चित करता है कि व्यक्ति का जन्म किस गोत्र में होगा, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जो आयु निश्चित करता है उसे आयु कर्म कहते हैं। जो ज्ञान को नष्ट करता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जो विश्वास को नष्ट करता है उसे दंशनावरणीय कर्म कहते हैं। जो मोह पैदा करता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। जो सुख या दुख की वेदना उत्पन्न करता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ ही हमारी कुप्रवृत्तियां हैं जो हमें बंधन में डालती हैं। इन्हें कषाय कहते हैं, क्योंकि ये पुद्गल कणों की अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। जीव की ओर कितने तथा किस प्रकार के पुद्गल कण आकृष्ट होंगे यह जीव के कर्म या वासना पर निर्भर करता है। ऐसे पुद्गल कण को कर्म पुद्गल का नाम दिया जाता है, कभी कभी इसे कर्म भी कहते हैं। जीव की ओर जो कर्म पुद्गल का प्रवाह होता है उसे आश्रव कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन मत के अनुसार बंधन का एक विशिष्ट अर्थ है कषायों के कारण कर्मानुसार जीव या पुद्गल से आक्रांत हो जाना ही बंधन है। चूंकि दूषित मनोभाव ही बंधन का मूल कारण है और पुद्गल का आश्रव मनोभाव का एक परिणाम है, इसलिए जैन दार्शनिक कहते हैं कि जीव का पतन या बंधन मानसिक प्रवृत्तियों के कारण ही होता है। वे बंधन के दो भेद मानते हैं, भावबंध तथा द्रव्यबंध। मन में दूषित भावों का अस्तित्व ही भावबंध कहलाता है। जीव का पुद्गल से आक्रांत हो जाना द्रव्यबंध कहलाता है। बंधन की अवस्था में पुद्गल तथा जीव एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि यह विचार युक्ति संगत न प्रतीत हो, किंतु हम देख चुके हैं कि जीव का विस्तार संभव है। यह शरीर का समव्यापी होता है। यह अनुभव सिद्ध है कि सजीव शरीर के प्रत्येक भाग में पुद्गल और चैतन्य वर्तमान रहते हैं। इन दोनों का परस्पर सम्मिश्रण उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार दूध और जल मिला देने पर दोनों एक ही समान रहते हैं, या गर्म लोहे में आग और लोहा एक ही साथ पाया जाता है। इसका दूसरा टॉपिक है मोक्ष। हम देख चुके हैं कि जीव और पुद्गल के संयोग को बंधन कहते हैं, अतः जीव का पुद्गल से वियोग होना मोक्ष है। पुद्गल से वियोग तभी हो सकता है जब नए पुद्गल का आश्रय बंद हो और जो जीव में पहले से ही प्रविष्ट हैं वह जीर्ण हो जाए। पहले को संबर और दूसरे को निर्जरा कहते हैं। पहले कहा जा चुका है कि जीव में पुद्गल का आश्रय जीव के अंतर्निहित कषायों के कारण होता है। इन कषायों का कारण अज्ञान है, अर्थात आत्माओं का तथा अन्य द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त न होने के कारण ही हमारे मन में क्रोध, मान, माया और लोभ की उत्पत्ति होती है। अज्ञान का नाश ज्ञान प्राप्ति से ही हो सकता है। अतः जैन दार्शनिक सम्यक ज्ञान या तत्व ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण ज्ञानी तीर्थकरों या अन्य मुक्त महात्माओं के उपदेशों के मनन से होती है। इनके उपदेश इसलिए लाभदायक होते हैं कि ये स्वयं मोक्ष पाकर उपदेश देते हैं, किंतु उपदेशों के मनन करने के पूर्व उनका सारांश जान लेना आवश्यक है। साथ साथ उपदेष्टाओं के प्रति श्रद्धा का होना भी आवश्यक होता है। इस श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में सम्यक दर्शन बड़ा सहायक होता है, किंतु केवल सम्यक लेने से ही कुछ फल नहीं मिलता, अर्थात सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही कुछ फल नहीं मिलता, उसके अनुसार जीवन यापन करना आवश्यक है। अतः सम्यक चरित्र एक तीसरा आवश्यक साधन है। सम्यक चरित्र के अनुसार हमें वासना, इंद्रिय, मन, वचन तथा कर्म को संयत करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि नए कर्मों का संचय बंद हो जाता है और पुराने कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप उन पुद्गलों का भी नाश हो जाता है जिनके कारण जीव बंधन में पड़ा रहता है। जैन दार्शनिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को त्रिरत्न कहते हैं। मानो ये जीवन के अलंकार है। तत्वार्थाधिगम सूत्र में ही उमा स्वामी ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है। तीनों के सम्मिलित होने पर ही मोक्ष मिलता है। यहाँ तीनों का पृथक पृथक वर्णन किया जाता है। पहला सम्यक दर्शन। उमा स्वामी के अनुसार यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा का होना सम्यक दर्शन कहलाता है। कुछ लोगों में तो यह स्वभावतः विद्यमान रहता है और कुछ इसे विद्योपार्जन एवं अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं। किंतु श्रद्धा का उदय तभी होता है जब किसी कर्म से अश्रद्धा की उत्पत्ति होती है, उस कर्म का शंबर या निर्जर होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। जैन दार्शनिक इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं कि हमें तीर्थकरों के उपदेशों को आंख मूंद कर मान लेना चाहिए। प्रख्यात जैन दार्शनिक मणिभद्र कहते हैं कि जैन मत युक्तिहीन नहीं, वरन युक्ति प्रधान है। उनका कहना है, न मेरा महावीर के प्रति कोई पक्षपात है और न कपिल या अन्य दार्शनिकों के प्रति द्वेष ही है। मैं युक्ति संगत वचन को ही मानता हूँ, वह चाहे जिस किसी का हो। श्रद्धा पूर्णतया युक्ति संगत है या अंधविश्वास नहीं है। विषय के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ही यह होती है, और ऐसे विश्वास के बिना पूर्ण ज्ञान पाने की प्रेरणा भी नहीं मिल सकती। संशयवादी भी जब किसी मत का विचार करता है तो उसे भी स्वतः अपनी विचार प्रणाली और अपने विचार्य विषय में कुछ विश्वास रहता है। जैन दार्शनिक कहते हैं कि यदि हमारे उपदेशों में कोई तथ्य है तो जिनको उन पर पूरा विश्वास नहीं भी है, उनका भी उपदेशों के अध्ययन करने पर पूरा विश्वास जम जाता है। अधिकाधिक मनन करने से विश्वास और बढ़ता ही जाता है। इस तरह पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर विश्वास भी पूर्ण हो जाता है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन में जैन उपदेशों के केवल सारांश का ज्ञान प्राप्त रहता है, किंतु सम्यक ज्ञान में जीव और अजीव के मूल तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही सम्यक ज्ञान असंदिग्ध तथा दोष रहित होता है। जैन प्रमाण विचार में तो हम यह देख ही चुके हैं कि यथार्थ ज्ञान किस भांति प्राप्त होता है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन के प्रतिबंधक कर्म ही होते हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के प्रतिबंधक भी विशेष प्रकार के कर्म ही होते हैं। अतः इसके लिए कर्मों का नाश आवश्यक है। कर्मों के पूर्ण विनाश के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है सम्यक चरित्र। अहित कार्यों का वर्जन और हित कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र के द्वारा जीव को अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि कर्मों के कारण ही बंधन और दुख होते हैं। नए कर्मों को रोकने के लिए तथा पुराने कर्मों को नष्ट करने के लिए निम्नोक्त क्रियाएं आवश्यक हैं। पहला, पंच महाव्रत का पालन करना चाहिए। दूसरा, चलने बोलने भिक्षादि ग्रहण करने, पुरुष और मूत्र त्याग करने में सीमित या सतर्कता का अवलंबन करना चाहिए। तीसरा, मन वचन तथा कर्म में गुप्ति या संयम का अभ्यास करना चाहिए। चौथा, 10 प्रकार के धर्मों का आचरण करना चाहिए। वे धर्म हैं क्षमा मादर्व अर्थात कोमलता, आजर्व अर्थात सरलता, सत्य शौच संयम तप यानी मानस और बाह्य, त्याग आकिंच्य अर्थात किसी पदार्थ से ममता न रखना, और ब्रह्मचर्य। जीव और इसका पांचवा है जीव और संसार के यथार्थ तत्व के संबंध में भावना करनी चाहिए। छठा, भूख प्यास शीतोष्ण आदि के कारण जो कष्ट या उद्वेग हों उन्हें सहना चाहिए। सातवां, समता निर्मलता निर्लोभता और सच्चरित्रता का प्राप्त करनी चाहिए। अनेक जैन दार्शनिक उपयुक्त सभी आदेशों को आवश्यक नहीं समझते हैं। कुछ तो पंच महाव्रतों का पालन ही सम्यक चरित्र के लिए पर्याप्त मानते हैं। कारण यह है कि अन्य आदेशों में भी भिन्न भिन्न प्रकार से पंच महाव्रतों की ही पुनरावृत्ति हुई है। पंच महाव्रत की महत्ता उपनिषद के ऋषि तथा बौद्ध दार्शनिक भी मानते हैं। बौद्ध दार्शनिक इसे पंचशील के रूप में मानते हैं। ईसाई धर्म के जो 10 आदेश हैं वे भी इनसे मिलते जुलते हैं। किंतु जैन जिस कठोरता के साथ इन व्रतों का पालन करते हैं, वैसी कठोरता शायद ही अन्यत्र पाई जाती हो। पहला, अहिंसा। इसका अर्थ है जीवों की हिंसा का वर्जन। हम इसका विचार कर चुके हैं कि जीव का अस्तित्व केवल त्रस या गतिशील द्रव्यों में नहीं वरन स्थावर द्रव्यों में भी है। उदाहरण स्वरूप वनस्पति, चिति, जल आदि अस्तिकाय द्रव्यों में जीव का अस्तित्व है। अतः जैनों का उद्देश्य यह नहीं कि केवल त्रस जीवों की ही हिंसा नहीं हो, बल्कि वे स्थावर जीवों की भी हिंसा करना निकृष्ट समझते हैं। अतः अनेक जैन सन्यासी नाक में कपड़ा बांधे रहते हैं, जिससे श्वास लेने में या फेंकने में वायु स्थित जीवों की हिंसा न हो जाए। साधारण गृहस्थों के लिए यह व्रत अत्यंत कठिन है। उनके लिए यह विहित समझा गया है कि वे कम से कम त्रस जीवों की हिंसा न करें, अर्थात एकेंद्रीय जीवों को छोड़कर अन्य सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखें। जैनों का अहिंसा सिद्धांत उनके तत्व संबंधी विचारों पर ही अवलंबित है। जैन दार्शनिकों के अनुसार सभी जीव यथार्थ दृष्टि से समान हैं। वे कहते हैं कि जीवों में पारस्परिक समादर का भाव रहना चाहिए, अर्थात दूसरों के प्रति हमारा आचरण वैसा ही होना चाहिए जैसा हम चाहेंगे कि दूसरों का हमारे प्रति हो। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि आदि युग के असभ्य मनुष्य में जीवों के प्रति भय की भावना रहती थी, वही अहिंसा का मूल कारण है। किंतु ऐसा सोचना उचित नहीं है। कोई भी जीव, चाहे वह नीच से नीच स्थिति में क्यों न हो, उच्च से उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह सर्वथा उचित है कि प्रत्येक जीव दूसरे को भी अपने ही जैसा समझे। जीवों के प्रति आदर का होना तो आवश्यक कर्तव्य है। जैन अहिंसा व्रत का पालन छोटे छोटे कार्यों में भी करते हैं, यहाँ तक कि वे जीव की हिंसा नहीं करना ही पर्याप्त नहीं समझते, बल्कि हिंसा के संबंध में सोचना, बोलना या दूसरों को हिंसा करने की अनुमति या प्रोत्साहन देना भी उनके लिए अधर्म है। जब तक मन, वचन तथा कर्म से अहिंसा व्रत का पालन नहीं किया जाए, तब तक अहिंसा पूर्ण नहीं समझी जाती है। दूसरा, सत्य। मिथ्या वचन का परित्याग। इस व्रत को भी बड़ी तत्परता से पालन करने की आवश्यकता है। सत्यवादिता का आदर्श है सुनृत्। जो सत्य सबका हितकारी हो और प्रिय हो, उसे सुनृत कहते हैं। प्रियम पथ्यम वचस्तथ्यम सुनृतम व्रत मुच्यते। केवल जो सत्य है उसे कहने से वह कभी कभी दूषणीय वाचालता, ग्राम्यता, चपलता तथा पर निंदा भी हो सकता है। इसलिए सत्यवादिता का आदर्श सुनृत माना गया है। सत्य व्रत का पालन करने के लिए मनुष्य को लोभ, डर और क्रोध को दूर करना चाहिए और किसी का उपहास करने की प्रवृत्ति का भी दमन करना चाहिए। तीसरा है, अस्तेय। चौर वृत्ति का वर्जन, अर्थात बिना दिए हुए पर द्रव्य का ग्रहण करना ही अस्तेय है। जैनों के अनुसार किसी जीव का प्राण जिस तरह पवित्र है, उसी तरह उनकी धन संपत्ति भी है। एक जैन विद्वान कहते हैं कि धन संपत्ति मनुष्य का बाह्य जीवन है। अतः धन संपत्ति का अपहरण मानो उसके जीवन का ही अपहरण है। जीवन का अस्तित्व प्रायः धन पर ही निर्भर करता है। अतः प्राण के आधारभूत धन की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक हो जाती है। हम देखते हैं कि अहिंसा के साथ अस्तेय का अच्छेद संबंध है। चौथा है, ब्रह्मचर्य, अर्थात वासनाओं का परित्याग। बहुत लोग ब्रह्मचर्य से केवल कौमार्य जीवन समझते हैं। जैन इससे केवल इंद्रिय सुखों का ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के कामों का परित्याग समझते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म के द्वारा तो इंद्रिय सुख का उपभोग बंद कर देते हैं, किंतु मन और वचन के द्वारा उनका उपभोग करते ही हैं। ऐसा भी होता है कि इस संसार के सुख भोग की कामना छोड़ते हुए भी हम प्रायः परलोक में सुखापभोग की कामना रखते हैं। स्वयं सुख नहीं चाहते हुए भी दूसरों को सुख भोग करने के लिए अनुमति या आज्ञा देते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करना पड़ता है, चाहे उन कामनाओं के विषय मानसिक हो या बाह्य, सूक्ष्म हो या स्थूल, ऐहिक हो या पारलौकिक, अपने लिए हो या दूसरों के लिए। पांचवा है अपरिग्रह अर्थात विषयाशक्ति का त्याग। इस व्रत के लिए उन सभी विषयों का परित्याग करना पड़ता है जिनके द्वारा इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है। ऐसे विषयों के अंतर्गत सभी प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध हैं। मनुष्य सांसारिक विषयों में आसक्त होने के कारण बंधन में पड़ जाता है। फल यह होता है कि उसे पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है और वह तब तक मोक्ष नहीं पा सकता जब तक फिर विषयों से अनासक्त नहीं हो जाता। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक की उन्नति या अवनति से दूसरे की उन्नति या अवनति होती है। चरित्र के उन्नत होने पर ज्ञान और दर्शन की भी उन्नति होती है। जब तीनों की पूर्णता होती है तब मनुष्य अपने नए और पुराने कर्मों तथा राग द्वेषों पर विजय प्राप्त करता है। पुद्गल जनित बाधाओं से मुक्त होकर जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पुनः पहचान लेता है। मोक्ष की अवस्था में जीव को अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख प्राप्त हो जाता है। इसका तीसरा टॉपिक है जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन अनिश्वरवाद अर्थात बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता। जैनों का अनिश्वरवाद निम्नलिखित युक्तियों पर अवलंबित है। पहला, प्रत्यक्ष के द्वारा ईश्वर का ज्ञान नहीं मिलता है, उसका अस्तित्व युक्तियों के द्वारा प्रमाणित होता है। न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए निम्न प्रकार की युक्ति दी गई है। प्रत्येक कार्य के लिए एक कर्ता की आवश्यकता होती है। गृह एक कार्य है अर्थात एक निर्मित वस्तु है। इसको किसी कर्ता ने बनाया है, नहीं तो उसका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार यह संसार भी एक कार्य है, अतः इसके लिए भी एक कर्ता का सृष्टा की आवश्यकता है। वह कर्ता या निर्माता ईश्वर है, किंतु यह युक्ति निर्दोष नहीं है क्योंकि यह मान लिया गया है कि यह संसार भी एक कार्य है। इसके लिए क्या प्रमाण है कि संसार कार्य है? हम यह नहीं कह सकते कि संसार सावयव है इसलिए कार्य है। सावयव का अर्थ यदि यह हो कि इसके अवयव या अंश है तो आकाश को भी सावयव तथा कार्य मानना चाहिए क्योंकि आकाश के विभिन्न अंश हैं। किंतु न्यायिक तो आकाश को कार्य नहीं मानते वरन नित्य मानते हैं। किसी कार्य के संबंध में यह भी देखा जाता है कि उसका निर्माता अपने शारीरिक अवयवों के द्वारा उपादानों से उसका निर्माण करता है, किंतु ईश्वर तो अवयवहीन है। वह किस प्रकार उपादानों से किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है? दूसरा, ईश्वर के अस्तित्व की तरह उसके गुणों के संबंध में भी पूरा संदेह हो सकता है। ईश्वर एक सर्वशक्तिमान, नित्य तथा पूर्ण समझा जाता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण वह सभी वस्तुओं का मूल कारण समझा जाता है, किंतु यह सत्य नहीं है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि घर, बर्तन आदि अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें ईश्वर नहीं बनाता। ईश्वर को एक माना जाता है क्योंकि यह कहा जाता है कि अनेक ईश्वरों को मानने से उनमें मतों और उद्देश्यों का संघर्ष हो सकता है, जिसका फल यह होगा कि संसार में सामंजस्य संभव नहीं होगा। किंतु हम देखते हैं कि संसार में सामंजस्य है, इसलिए यह सिद्ध है कि ईश्वर एक ही है। लेकिन यह युक्ति ठीक नहीं है, क्या कई गृह शिल्पी एक साथ मिलकर प्रासाद नहीं बना लेते? चींटियां एक साथ मिलकर वाल्मीकि नहीं बना लेती? मधुमक्खियां मिलकर मधुकोश नहीं बना लेती? ईश्वर को नित्य मुक्त और नित्य पूर्ण समझा जाता है, किंतु नित्य मुक्त शब्द का कोई अर्थ नहीं है। मुक्ति की प्राप्ति बंधन का नाश होने पर ही हो सकती है, अतः ईश्वर को नित्य मुक्त कैसे माना जा सकता है? यद्यपि जैन धर्मावलंबी किसी जगत सृष्टा ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी वे सिद्धों की आराधना आवश्यक समझते हैं। ईश्वर के लिए जो जो गुण आवश्यक समझे जाते हैं, वे सभी तीर्थकरों में ही पाए जाते हैं। अतः जैन धर्म में तीर्थकर ही मानो ईश्वर हैं। मार्ग प्रदर्शन के लिए तथा अंतः प्रेरणा के लिए इन्हीं की पूजा की जाती है। जैन धर्म में पंच परमेष्ठी को माना जाता है। पंच परमेष्ठी है अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। धर्मपरायण जैनों के लिए पंच परमेष्ठी की पूजा दैनिक कार्य क्रम का एक प्रधान अंग है। ईश्वर के प्रति अविश्वास रहने पर भी जैनों में न तो धर्मोत्साह की कमी है और न धार्मिक क्रियाओं की ही। तीर्थकरों के सद्गुणों का निरंतर ध्यान करते रहने से वे इस बात का स्मरण करते रहते हैं कि वे भी उनकी तरह सिद्ध और मुक्त हो सकते हैं। पूत चरित्र तीर्थकरों का बराबर चिंतन करते रहने से वे अपने आप को भी पवित्र करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने को सुदृढ़ बनाते हैं। जैनों के लिए पूजा वंदन का उद्देश्य करना प्राप्ति नहीं है। उन्हें तो कर्मवाद जैसी अलंद्य व्यवस्था में विश्वास है, जिसमें दूसरे के लिए करुणा का कोई स्थान नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों का नाश विचार वचन और कर्मों के द्वारा ही हो सकता है। कल्याण की प्राप्ति अपने ही कर्मों के द्वारा हो सकती है। तीर्थकर तो मार्ग प्रदर्शन के लिए केवल आदर्श का काम करते हैं। जैन धर्म केवल उन पुरुषों के लिए है जो वीर और दृढ़ चित्त है। इसका मूल मंत्र मानव स्वावलंबन है। अतः जैन धर्म से मुक्त आत्मा को जिन और वीर कहा जाता है।